सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली बणिदं। यह कुंदकुंद आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार की हमारी 16 नंबर की गाथा चल रही है और ये जो प्रवचन रत्नाकर जो है उसके भाग दूसरे के 9 नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं। अभी यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यह जो आत्मा है इस आत्मा को तुम दो पद्धति से साध सकते हो, एक साधक भाव से और एक साध्य भाव से। मूल बात तो यह है कि अपने स्वभाव का अनुभव करना, यही मुख्य बात है और यही समय सार का सार है। और वह जो अनुभव करना कहो या आत्मा को साधना जो है उसके दो पद्धति बताइए, एक साधक भाव से और एक साध्य भाव से। जो साध्य भाव प्राप्त हो जाए तो निरंतर साध्य भाव की साधना हो गई है, लेकिन जब तक वह प्राप्त नहीं होता है, कौन सा साध्य भाव, तब तक साधक भाव से। ये साधक भाव यानी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, यही साधक भाव है। और एक दफे उसकी प्राप्ति हुई तो अब यहाँ चलो हाश सब काम हो गया, ऐसा नहीं, तो निरंतर, ये भी बात बताइए, ख्याल में आया। ये इस तरह हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसकी बात हमने अभी देखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के पृष्ठ पर, जो पहला बड़ा पैराग्राफ है। साधु पुरुषे दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवा योग्य छे। तो साधु पुरुष कहने पर ये बात निश्चित होती है कि यह साधु पुरुष यानी जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है उसी को साधु कहेंगे। क्यों लिखा है ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवा योग्य छे, यानी उसका उसने सेवन करना चाहिए। एम वेद पाड़ी ने कथन करवामां आवे छे। कौन सा वेद पाड़ा? दर्शन ज्ञान चारित्र। 8वीं गाथा में कहूं ने के दर्शन ज्ञान चारित्र ने जे हमेशा प्राप्त होते आत्मा एवो भेद करियो, पण परमार्थे जोवामां आवे तो ए त्रणे एक आत्मा जो छे। 8वीं गाथा में भी यही बताया था। अब कहते कि वो तो व्यवहार से कहा, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो तीनों बातें यानी एक आत्मा ही है। केम के त्रणे पर्याय आत्मा थी जुदी नथी, ए एकनु एटले आत्मानु सेवन करवाथी निर्मल पर्याय उत्पन्न थाय छे। पण त्रणनु सेवन करवाथी निर्मल पर्याय उत्पन्न थाय छे एम नथी, यानी पर्याय का अवलंबन लेने से निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। यानी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो पर्याय है उस पर्याय का भी अवलंबन नहीं लेने का है, वो त्रिकाली का अवलंबन लेंगे तो सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट होगी, ऐसा समझा रहे। सूक्ष्म बात भाई, आ तो आत्मा बापू एमा भगवान विराजे छे, अंदर बधा भगवान आत्मा भगवान स्वरूप ज छे, ए एक रूप सच्चिदानंद प्रभु जेनो न्यायक एक स्वभाव छे, ते द्रव्य नु सेवन करवूं ए परमार्थ छे। यानी वही निश्चय से वही बात है कि आत्मा का सेवन करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एम त्रण प्रकारे सेवन करवूं ए व्यवहार नु कथन छे, क्योंकि एक ही द्रव्य को वस्तु को भेद कर करके समझाया है। इस समझाने के लिए तो उसका भेद करना अनिवार्य है, इसके बगैर समझे नहीं। लेकिन कहते हैं ऐसे तीन भेद जो है, इन तीनों भेदों का आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि भेद है वह पर्याय है ना, इसलिए कहते हैं उसका आश्रय लेने योग्य वह नहीं है। कलश टीका करें, आत्मा मेच कहा, इटले चेतन द्रव्य जे त्रण प्रकारे थाय छे ते मेचक कहता मलिन छे एम कहूं। यानी जो भेद करके समझाया और हम भेद पर ही दृष्टि करेंगे तो हमें राग की उत्पत्ति होगी, इसलिए वो जो अनेकाकारपना जो है, जो शुभ परिणाम है, वह मलिन है, ऐसा कह रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय ए एक ना त्रण भेद थया ए मलिन छे, व्यवहार छे पर्याय छे ने, पर्याय ऊपर लक्ष्य जाए तो राग ज थाय, अने राग मलिन छे ने। नलिन भाई बात ख्याल में आई, आपके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था, तो साल हो गया ना अभी, मैं समझ गया आपके मन में क्या प्रश्न है, फिर भी सोचा कि पढ़ तो लूं तो अपने आप वो साल हो जाएगा बराबर। हाँ देखो यहाँ क्या समझा रहे हैं, हम अपना पुराना फॉर्मूला याद करना कि हाँ, जब जब इस जीव के पर ऊपर ध्यान जाता है या पर्याय ऊपर ध्यान जाता है, किसकी बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व जीव की, ओ तब तब उसको राग की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। राग कहो द्वेष कहो ख्याल में है, लेकिन अभी मैं क्यों मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ, अभी आठवें गुणस्थान वर्ती जो जीव है वह तो हम समझते कि शुद्ध उपयोग में अपने ही आत्मा का अनुभव करता होगा, उसका उपयोग अपने ही आत्मा पर लगा होगा, ऐसा नेसेसरीली है नहीं। वो पुद्गल के बारे में भी सोचेगा तो उसमें वितरागता सहित उसका जानना है, तो उधर उसको राग नहीं होता है, वहां द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, योग से योगांतर, ऐसा भी बताया है। ख्याल में पृथक्त्व वितर्क अविचार, इसमें ये बात आती है, क्या करेंगे, इसलिए तो बताया कि ये किसकी बात हम कर रहे हैं, प्रद विचार होगा, अविचार नहीं, विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार, यानी अलग अलग इसके ऊपर, अलग अलग इस पर इसके मंथन चलता है, लेकिन वो वितरागता सहित है। और यहाँ क्या है, जो मिथ्यादृष्टि जीव है उसके तो जरा कहीं पर पे नजर जाने का ही अवकाश। अभी क्या ये कारपेट कितना दिन से वही देख देख के हम कंटाल गए, नया तो लाना चाहिए कि नहीं, ऐसा मन में प्रश्न होता है ख्याल में। तो ये पर पे पर नजर गई, पर्याय पर भी आपने तो भी वहां गड़बड़ी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो तीन पर्याय कौन सी बताई, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन अलग अलग भेद हो गए ना। तो कहते हैं इस जीव के उसके ऊपर राग द्वेष होगा, इसलिए कहते हैं कि वह तीन जिसका भेद है ऐसा अभेद आत्मा जो है उसका अवलंबन लीजिए आप। ये समझा रहे, अभी यहाँ आगे पीछे का रेफरेंस दे रहे, नियम सार नहीं पांचवी गाथा में कहूं छे के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने निर्मल पर्याय ए बहिर्तत्व छे, क्योंकि वो त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, यह बात हमने देखी थी। आई रागनी बात तो छेज नहीं, क्या नियम सार में और अभी यहां पर भी निर्मल पर्याय ने बहिर्तत्व कही छे, तथा अंतस्तत्व शुद्ध परमात्मा छे, पूर्ण अंतस्तत्व रूप ન્યાયક પરમાત્મા અને બહિર્તત્વરૂપ નિર્મળ પર્યાય એ બે તત્વોની શ્રદ્ધા કરવી એ વ્યવહાર સમકિત છે. નિશ્ચય સમકિત તો આપણે આત્મા કહી ખ્યાલ મેં જીવ અજીવ આશ્રવ બંધ આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ સાત તત્વોની શ્રદ્ધા એ પણ વ્યવહાર શ્રદ્ધા છે. અભી યહાં પર ઉન્હોને ક્રમ બદલી ક્યા હૈ જો સમયસાર મેં ક્રમ હૈ ના જીવ અજીવ ઉન્હોને કર્તા કર્મ બીચ મેં ડાલ દિયા આશ્રવ સંવર નિર્જરા ઓર બંધ ઓર બાદ મેં મોક્ષ યહી સમયસાર મેં ઇસી પ્રકાર કે અધિકાર આયેંગે. એ કહેતે ઇન સાતો કી તત્વ શ્રદ્ધા હૈ જો વો વ્યવહાર શ્રદ્ધા હૈ. વ્યવહાર શ્રદ્ધા એ કઈ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય નથી. એ તો સ્ર પાઇજે સ્ર ક્ર ક્રમ કસા લિખતે હમ વૈસા સ્ર કો એસા લિખના. એ આશ્રવ લિખા હૈ વો ગલત હૈ. ઇટ શુડ બી આશ્રવ. હમ કહેતે ના શ્રવણે શ્રવણે. હા જી ભલે બોલતે હોંગે લેકિન વો અશુદ્ધ બોલના હૈ. એ પુરાણે મેં આશ્રવ હિ હૈ હમારે પાસ જો પુરાણ હૈ કે હા ઠીક હૈ ઠીક હૈ. આશ્રવ ચાહિયે શ્ર નહીં શ્રીમાન કા શ્ર નહીં. કહી કહી લિખતે હૈ નહીં નહીં. ગુજરાતી લોકો કા આશ્રવ ઓર મરાઠી લોકો કા આશ્રવ દોનો કા એક હી હૈ. ઉસ આશ્રવ મેં કોઈ ફર્ક નહીં. હા જી
આપકે પાસ નયા હૈ મગર હમારે પાસ ભી ગુજરાતી પુસ્તક હી હૈ ઉસમે આશ્રવ બરાબર લિખા હૈ.
અનેક પુસ્તકો મેં આશ્રવ ભી લિખા હોગા તો વહાં કૃપયા આપ ઉસકો આશ્રવ એસા હી સમજના પઢના ઓર આશ્રવ બોલને કી ગલતી મત કરના. દેખો બહોત બાર એસા હોતા હૈ કે હમ જબ નમોકાર મંત્ર બોલતે હૈ તો કભી કભી નમો અરિહંતાણમ એસા બોલા જાતા હૈ તો વહ તો નમો અરિહંતાણમ ણમ જૈસા વૈસા ણ એસા હી ચાહીએ ક્યોંકિ યહ મંત્ર જો હૈ વહ પ્રાકૃત ભાષા કા હૈ ઓર પ્રાકૃત મેં ન નહીં રહેતા ણ હી રહેતા હૈ. નિશ્ચયેન ણિગોધ પોણિગોધ કરેંગે ઓર આપ અકલુજ પલટન મેં જાયેંગે તો વહાં કે લોગ ભી ણ ણ હી બાત કરતે ન કો ભી નળાળા પાણી આલી કા એસા ણ બોલેંગે. વો પ્રાકૃત કે ફોલોઅર્સ હૈ ને. એસે ગડબડી હોતી હૈ બહોત જગહ. इसके साथ साथ और भी एक बात है. देखो अभी हम जो कहते हैं ना उच्छामी समय पाहुड़ तो उसमें भी ध्रुवम नहीं है ध्रुवम है. कई लोग ध्रुवम कहते हैं. क्या शुरुआत क्या है जरा बता ना. ये अभी हम हाँ जी वंदित सव सिद्धे ध्रुवम अचलम ऐसा नहीं है ध्रुवम है. आप पहले पुस्तक निकाल के देखना. આજ વિષય નિકલા એટલે મેં ચૂપચાપ બેઠા 100 લેક્ચર તક. જો કિતના પેશન્સ હૈ. ધુ ધુ યે પ્રાકૃત હૈ ના ધુવમ અચલમ. આપ આપકે પાસ કિતાબ હૈ ના પઢ લો ના પહેલી પહેલે નંબર કી. હા પ્રાકૃત મેં હૈ સંસ્કૃત મેં હૈ. હા ચલો ચલો જાણે દો આપના વિષય આગે બઢાએંગે. તો યહાં ક્યાં કહે રહે પર્યાય ઉપર લક્ષ્ય જાય તો રાગ થાય છે અને રાગ છે તે મલિન જ છે. યહાં તો બાત હો ગઈ. અબ અભી યહાં ક્યાં કહેતે હમારી બાત તો યે હો રહી કે વ્યવહાર શ્રદ્ધા એ કઈ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય નથી. વ્યવહાર શ્રદ્ધા કહો યા વ્યવહાર સમ્યક દર્શનમ જીસકો કહેતે હૈ તો કહેતે એ તો રાગ છે વિકાર છે. તો યે અભી તક મેં બહોત બાર યે બતાતે આયા હું ઓર મેરે પે લોગો કા ભરોસા નહીં હૈ તો અભી તો કમ સે કમ સ્વામીજી ઉપર તો ભરોસા રખો. ક્યા આય કહે છે કે જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય છે એ બહિતત્વ છે, અને બહિર્તત્વ ઉપર લક્ષ્ય જાય એ વ્યવહાર છે, મલિન છે, અનેકાકાર છે, અનેક સ્વભાવ છે. જો કઈ અપેક્ષાએ લીધું? સમયસાર કળશ ટીકા કળશ 16 આવે છે કે સામાન્યપણે અર્થગ્રાહકત્વ શક્તિનું નામ દર્શન. યે જ્ઞાન દર્શન વાલી દર્શન કી બાત નહીં કર રહે હૈં, યે શ્રદ્ધા ગુણ કી બાત કર રહે હૈં. ક્યા કહા? સામાન્યપણે અર્થગ્રાહક શક્તિનું નામ દર્શન, વિશેષપણે અર્થગ્રાહક શક્તિનું નામ જ્ઞાન, અને શુદ્ધત્વ શક્તિનું નામ ચારિત્ર. એમ આમ શક્તિ ભેદ કરતા, યાને ઉસમેં શક્તિ કે અલગ અલગ યે ભેદ કરને સે એક જીવ ત્રણ પ્રકારે થાય છે, તેથી મલિન કહેવાનો વ્યવહાર છે. યાને ઉસસે આત્મા મલિન હોતા એસા નહીં હૈ. વો તીન ભેદ કરકે હમ ઉસકે ઉપર હી લક્ષ્ય દેતે હૈ તો આપને મેં મેચક બનાય અને અનેક પ્રકારતા નિર્માણ હોતી હૈ. ક્યોંકિ આપમે જો કોઈ રાગ હોગા વો કિસી કા કમ હોગા, કિસી કા અધિક હોગા, તો ઉસમેં અલગ અલગ જુદા બને ને, તો અનેકપના હોતા હૈ. એકને ત્રણ પ્રકારે કહેવો એ વ્યવહાર છે, અને વ્યવહાર છે તે અસત્યાર્થ છે. કળશ 17 ભાવાર્થમાં આવે છે, યાને યા ભી દોનો આને વાલે 16 કે ઉપર 16 કલશ ઓર 17 કલશ 18-19 વગેરે 17 ભાવાર્થમાં આવે છે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી આત્મા એક છે, પણ પર્યાયાર્થિક નહીં એકને ત્રણ રૂપ પરિણમન થાય છે એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે, અસત્યાર્થ છે. અહીં ત્રિકાળી ભૂતાર્થ દ્રવ્યને મુખ્ય કરીને નિશ્ચય કહી સત્યાર્થ કહ્યું છે, અને પર્યાય માત્રને ગૌણ કરીને વ્યવહાર કહીને અસત્યાર્થ કહ્યો છે. યે સમજમાં આતા હૈ ના વિરેશભાઈ? પ્રોબ્લેમ નહીં ના? હા, આ તો વિતરાગનો માર્ગ છે ભાઈ. પ્રભુ ત્રણ લોકનો નાથ સર્વજ્ઞ છે, એની એક સમયની પર્યાયમાં સર્વ લોકાલોક સમાઈ જાય છે, એટલે જાણવામાં આવી જાય છે. આપ્તમીમાંસાના 48 શ્લોકમાં સ્વામી સમંતભદ્ર આચાર્ય કહે છે કે હે નાથ. એ સમંતભદ્ર આચાર્ય જો હૈ વો કોને માલુમ હૈ ને? રત્નકરણ શ્રાવકાચાર્ય જિન્હોને લિખા હૈ, ઉન્હોને યે આપ્તમીમાંસા યાની યે તો 110 તો ગાથા પ્રાપ્ત હુઈ હૈ, વો તો ઉનકા મંગલાચરણ હૈ. ખ્યાલ મેં? હા, તો ઉસમે ક્યા લિખતે હૈ? આપ્તમીમાંસાની 48 શ્લોકમાં સ્વામી સમંતભદ્ર આચાર્ય કહે છે કે હે નાથ, સમય એક અને ઉત્પાદવે દ્રવ્ય ત્રણ. એક સમયમાં ઉત્પાદવે દ્રવ્ય આપના જ્ઞાનમાં આવ્યા, એટલે સર્વ દ્રવ્યો જ્ઞાનમાં આવ્યા અને કહ્યા, તેથી આપ સર્વજ્ઞ છો એમ હું કહું છું. કોઈ એસા ઉનકી સ્તુતિ કરે ના, આપ તો કે મીમાંસા કરે, આપ તો યાને જો સર્વજ્ઞ ભગવાન હૈ ઉનકી મીમાંસા ને ઉનકે બારે મેં બતા રહે, યે બહોત બઢિયા હૈ ઇનકા. વો તો 110 ખાલી મિલે વો ભી અધૂરા હૈ, પૂરા નહીં આયે મંગલાચરણ. એક ક બોલે એમાં અસંખ્ય સમય જાય, એવા એક સમયમાં દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ વે દ્રવ્ય ત્રણ જેને જાણ્યા તેને આત્મા જાણ્યો, અને તેને સર્વ દ્રવ્યોનું જ્ઞાન થયું, તેથી હે તે સર્વજ્ઞ છે. ભાઈ આ તો ત્રણ લોકના નાથ કેવડીએ એક સમયમાં જે જોયું અને જે કથનમાં આવ્યું તે અલૌકિક વાતો છે. અહીં કહે છે કે એક આત્માને ત્રણ રૂપ પરિણમતો કહેવાય તે વ્યવહાર થયો, અસત્યાર્થ પણ થયો, તેથી તેને મેચક મલિન કહ્યો. કળશ 17 ભાવાર્થ. આહા, શું અર્થ કર્યો છે જયચંદ પંડિતે! પહેલાના પંડિતો વસ્તુની જેવી સ્થિતિ છે તેવા અર્થ કરતા હતા, પણ હમણાં ઘણી ગડબડ થઈ ગઈ છે. એ ગુજરાતી ગરબડ. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગનું સેવન કરવું, રાગનું સેવન કરવું, એ વાત તો છે નહીં, છે નહીં અને એ તો અસલ બાત નહીં હૈ, જૈન દર્શન કી એ બાત નહીં હૈ. રાગનું શું સેવન કરવું, એનો તો અભાવ કરવો છે. પરંતુ ભગવાન ન્યાયક સ્વભાવી એક ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ જે આત્મા, તેની દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ નિશ્ચયથી પરમાર્થ છે. એ નિશ્ચયથી પરમાર્થ જે પર્યાય છે તેને અહીં વ્યવહાર કહીને મલિન કહી છે. યાને જો ત્રિકાલી સ્વભાવ પર જો દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત હોતી હૈ ઓર ઉસ સમય ઉસ જીવ કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રાપ્ત હોતા હૈ, તો વૈસા યે પર્યાય જો તીન રૂપ સે કહી ગઈ હૈ, ઉસકો જિસને આત્મા કો અનુભવ કિયા હૈ, ઉસ પર્યાય કો વ્યવહાર કહા ગયા હૈ, ઉસ પર્યાય કો મલિન કહા ગયા હૈ, ઉસ પર્યાય કો મેચકપના કહા ગયા હૈ. પહેલા એનું વિકલ્પમાં પણ યથાર્થ જ્ઞાન તો કરે, જ્યાં વ્યવહાર એ વિકલ્પવાળું જ્ઞાન પણ યથાર્થ નથી, ત્યાં સત્ય જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન હોતું નથી. ક્યા કહે રે, દેખો દેખો, બહુ બહુ સ્ટ્રોંગ બાત હૈ. ક્યા કહે રે કે જો વ્યવહાર સે વિકલ્પ વાળા જો કોઈ જ્ઞાન હૈ વહ ભી હમારા સહી નહીં હો રહા હૈ, તો તુજે આત્માનુભવ કહાં હોને વાલા હૈ. ફિર સે નીચે સે થર્ડ લાઈન મેં, પહેલા એનું વિકલ્પમાં પણ યથાર્થ જ્ઞાન તો કરે. ઇસકો ક્યું વ્યવહાર કહા ગયા હૈ, ઉસકો ક્યું મલિન કહા ગયા હૈ, યે બાત પહેલે વિકલ્પ મેં તો લો, જ્યાં વ્યવહારે વિકલ્પ વાળું જ્ઞાન પણ યથાર્થ નથી ત્યાં સત્ય જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન હોતું નથી. યાને જિસકો ઇસ બાત કી ખબર નહીં હૈ, એસે જીવ કો તો સમ્યક દર્શન હોના હી, યાને સમ્યક જ્ઞાન હોના હી ગલત હૈ, હોગા હી નહીં એસા કહેતે. સાધુ પુરુષે ત્રણનું દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સેવન કરવું એમ વ્યવહારથી કહેવામાં આવ્યું છે, પણ પરમાર્થથી જોવામાં આવે તો એ ત્રણેય એક જ આત્મા છે. ત્રણેય અને વો તીન પર્યાય જો હૈ વો એક હી આત્મા હૈ, કારણ કે તેઓ અન્ય વસ્તુ નથી પણ આત્માની જ પર્યાયો છે. એ વાત ખ્યાલમાં આ ગઈ. ભાષા જો, મોક્ષ માર્ગની પર્યાય, નિશ્ચય રત્નત્રયની પર્યાય આત્માની પર્યાય છે, પરંતુ વ્યવહાર રત્નત્રયનો વિકલ્પ એ આત્માની પર્યાય નથી. ક્યું એસા ક્યું કહા? હા ઇન્દુબેન, હા સ્વભાવ ભાવ નહીં હૈ ઇસ અપેક્ષા સે ઉસકો આત્મા કી પર્યાય નહીં કહા, ફિર ભી કહેતે અસદભૂત નહીં, તો એ અસદભૂત નય સે હૈ. ક્યા કહા? પણ પરંતુ વ્યવહાર નહીં તો વિકલ્પે આત્માની પર્યાય નથી, અસદભૂત છે. આ નિશ્ચય રત્નત્રય એ સદભૂત વ્યવહાર છે. નિશ્ચય રત્નત્રય કો સદભૂત કહા, ક્યુંકિ આત્મા ઓર પર્યાય ભેદ કિયા ને. બનારસી દાસ વિરચિત પરમાર્થ વચનિકામાં કહ્યું છે કે દ્રવ્ય નિષ્ક્રિય છે, સમ્યક જ્ઞાન, સ્વસંવેદન અને સ્વરૂપાચરણની કણિકા જાગે ત્યારે મોક્ષ માર્ગ સાચો. મોક્ષ માર્ગ સાધવો એ વ્યવહાર અને શુદ્ધ દ્રવ્ય અક્રિય રૂપ નિશ્ચય છે. અભી એ પરમાર્થ વચનિકા હમને યહાં પઢી થી, અગર આપકો યાદ હોગા તો. ક્યું નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર આધ્યાત્મિક કી બાત લી થી ને, સમ્યક જ્ઞાન સોરી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક કે બાદ નિમિત્ત ઉપાદાન કી ચિઠ્ઠી ભી પડી હતી, રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી ભી પડી હતી ઓર પરમાર્થ વચનિકા ભી પડી હતી. ઇસકે બાદ લેંગે, જિંદા રહેંગે તો અભી 3 સાલ લગેંગે ઇસકો પૂરા હોને મેં. નિશ્ચય, સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગ સાધવો એ વ્યવહાર છે, પર્યાય છે ને, તેથી એ પ્રમાણે નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ સમ્યક દ્રષ્ટિ જાણે છે, પણ મૂળ જીવ એટલે અજ્ઞાની જાણે નહીં અને માને પણ નહીં, એટલે તો મૂળ રહી ગયો એમ કે છે. કે એસા ક્યું કહે રહે, ક્યુંકે નય જો હોતે ના તો સમ્યક દ્રષ્ટિ કે હોતે, उसके सांचे नए हैं। हम भले नयात्मक बोलेंगे लेकिन हमें उसका परफेक्ट भाव भाषण नहीं है, इसलिए अपन भले नए बोलेंगे, नए को जानेंगे, नए एक दूसरे को सिखाएंगे, तब भी नए का सही ज्ञान नहीं है। ये क्योंकि नए तो सम्यक दृष्टि के शुद्ध ज्ञान के अंश है। और यहाँ और क्या खासियत बताई? अज्ञानी क्या कहा? जाने नहीं, यहां तक तो ठीक है भाई, हम जाने नहीं, जान तो लिए पर माने नहीं। अभी अपनी बात ले लो, जहां हम मान रहे क्या? अब ये दृष्टांत आपे छे। जेम कोई देवदत्त नामना पुरुषना ज्ञान श्रद्धा ने आचरण देवदत्तना स्वभाव ने उल्लंघता नहीं हुआ थी ते वो देवदत्त छे, अन्य वस्तु नहीं। तेम आत्मा मा पण आत्माना ज्ञान श्रद्धा ने आचरण आत्माना स्वभाव ने उल्लंघता नहीं हुआ थी ते वो आत्मा जो छे, अन्य वस्तु नहीं। माटे एम स्वयमेव सिद्ध थाय छे के एक आत्मा ज सेवन करवा योग्य छे। मूल पाठ मा एटले गाथा मा दर्शन ज्ञान चारित्र लीधु छे, आई टीका मा ज्ञान श्रद्धा ने आचरण एम लीधु छे। देखो कितनी बारकाई से ध्यान देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मूल पाठ में क्या ले? दर्शन ज्ञान चारित्र। हम भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, लेकिन यहाँ जो टीका है, टीका में वो भी किसकी टीका? अमृत चंद्राचार्य जी की। वे कहते हैं कि टीका में ज्ञान श्रद्धा ने आचरण एम लीधु छे केम के, अभी उसके लिए उसका खुलासा करते हैं। जानवामां आवे त्यारे प्रतीति थाय छे। तुम वस्तु को जानेंगे ही नहीं तो उस पे श्रद्धा कैसा रखोगे? कि अभी देखो, देखो हमने आपसे कहा कि नलिन भाई हमको 1,00,000 रुपया दो, तो अभी देना के नहीं देना? तो जब तक तुम हमें जानते नहीं हो, और जब आप जानेंगे कि नहीं ये तो व्यक्ति ऐसा है कि आज लेके जाएगा और बाद में देगा, तो फिर तुम जान भी लिया और उस व्यक्ति को मान भी लिया, इसलिए तुमने उसको पैसा दिया। ऐसा होता है ना? तो तुम जानते ही नहीं हो, कोई जो अजानती व्यक्ति आके बोले कि हमको 1,00,000 रुपया दो, तो देंगे क्या आप? साल में है ना, इस तरह से। तो यहां ये समझा रहे हैं, आत्मा को जब तक हम जानते ही नहीं तो उसकी श्रद्धा भी कैसे करेंगे? वीरेश भाई कहते आप मेरे को मांग के तो देखो। अरे भाई, ये दृष्टांत के लिए हम मांग रहे हैं। हाँ, ख्याल में है? मिली जानता है कि आज तक हमने अपने लिए कभी पैसा मांगा नहीं है। हाँ, चलो क्या कह रहे? देखो देखो, केम के जानवा मा आवे त्यारे प्रतीति एटले श्रद्धा थाय। गाथा अभी आने वाली जो है 17-18 मा आवे छे, 17-18 मा आवे छे के आत्मा वस्तु ज्ञान पर्याय मा पूर्ण अखंड जानवा मा आवे तो जानी ने तेनी यथार्थ प्रतीति करे। वस्तु ख्याल मा आव्या विना प्रतीति कोनी। वाह, दिगंबर संतोनी कथनी पन केवी रहस्यमय। लोको तो बार मा आम करियो ने तेम करियो, नग्न थई गया ने लुगड़ा फेरव्या, एटले माने के थई गयो मोक्ष मार्ग। लुगड़ा फेरव्या याने कपड़े चेंज करने, याने पहले कलरफुल पहनता था, अभी सफेद पहन के घूमे, तो लुगड़ा फेरव्या, ऐसा हो गया। और कहीं तो नग्न थई गया, दोनों बातें लेना। लुगड़ा फेरव्या का अर्थ ऐसा भी हो सकेगा, मुझे मालूम नहीं है, कि निकाल देना, ऐसा होता है क्या? लुगड़ा फेर मैंने बदली किया ना। हाँ, वही तो मैंने बताया कि कलरफुल पहनता था मैं, ऐसा अभी सफेद वस्त्र धारण किया, जितना हो सके उतना उठावे, उतना परिग्रह लेके घूमे फिर। चलो, हाँ, क्या पूछ रहे हैं?
वो माता जी के लिए ऐसा नहीं लिखा, नहीं ऐसा कहते हैं।
हाँ, अम्मा के लिए नहीं लिखा है। नहीं, ये तो मुनि की बात हो गई ना, देखो आगे लिखा ना, लोको तो बार मां आम करियो ने तेम करियो, यानी मैंने ऐसा किया वैसा किया और क्या है नग्न थी गया। तो ये तो अपने दिगंबर जो कोई नग्नत्व धारण करते हैं, मतलब वो समझते हैं कि भाई हमने कपड़े छोड़ दिए तो हम मुनि हो गए, तो मुनि की अवस्था तो कैसी होगी कि अंतरंग में वितरागता नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, और सिर्फ अपनी अवस्था पलटाने से। क्योंकि देखो देखो मैंने तो ये कपड़े छोड़ दिए ना, और तुम हमको महाराज नहीं मानते हो, तो यहां कह रहे भाई तू कपड़े को छू नहीं सकता है, और कपड़े को ग्रहण करना या त्याग करना ये तेरे स्वभाव में नहीं है, और तू मानता है कि 40 साल हो गए हमने कपड़े छोड़ दिए हैं क्या। तो वो गलत बात है ऐसा समझ रहे, ख्याल में आया बेन। अब कह रहे और लुगड़ा फेर भी आया, यानी अन्य जगह कहीं ऐसा है कि भाई बाकी कपड़े छोड़कर सिर्फ सफेद सफेद पहन के एक धोती और ऐसा कुछ होता है वो लेके, इतले मानी गया थई गयो मोक्ष मार्ग, तो वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तो जग मार्ग है। पर आई कहे छे के तेथी स्वयं सिद्ध थाई छे के एक आत्मा नूज सेवन करवा थी त्रणे पर्याय रूप भावो प्रकट थाई छे, तेथी एक आत्माज सेवा योग्य छे। पहला त्रणे ने व्यवहार थी सेवा योग्य कया हता ते समझावा माटे कया हता, हवे कहे छे के निश्चय थी एक आत्माज सेवा योग्य छे त्रण नहीं। छठी गाथा पण आवे छे के पर तरफ नु लक्ष्य छोड़ी एक निज त्रिकाळी न्यायक भावनी सेवा उपासना करवी। जो टीकाना पहला फकरानी छेल्ली बे लीटी, पहला टीका यानी जो टीकाना पहला फकरा यानी पहला जो पैराग्राफ है उसके लास्ट दो लाइन में तेथी प्रमत्त पर नथी अने अप्रमत्त पर नथी, ये प्रमत्त यह भी अवस्था है पर्याय है और अप्रमत्त भी अवस्था है पर्याय है, इसलिए क्या कहते हैं तेथी प्रमत्त पर नथी अने अप्रमत्त पर नथी, तेज समस्त अन्य द्रव्यों ना भावोती भिन्नपने उपासवामा आवतो शुद्ध केवाय छे। यानी जो पर्याय रूप से नहीं है लेकिन जो त्रिकाली ऐसा जो कोई ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव समस्त अन्य द्रव्यों ना भावोती भिन्नपने, यानी किसी अन्य द्रव्य जैसा वो है नहीं, अन्य द्रव्यों के भावों जैसा नहीं है, और जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, ऐसा भिन्नपने अलग ऐसा जुदा जो उपासवामा हो तो यानी उसका ध्यान करने से वह शुद्ध है। भिन्नपने उपासवामा यानी उसको ऐसा ग्रहण ज्ञान में लेने से। आई अन्य द्रव्य ना भावो, यहां बता रहे अन्य द्रव्य का अर्थ क्या, अन्य द्रव्य के भाव इसका अर्थ क्या के द्रव्य कर्म अने द्रव्य कर्म ना उदियादी नु लक्ष्य छोड़ी वर्तमान पर्याय एक त्रिकाळी न्यायक भाव नु लक्ष्य करी तेमा झुके ते उपासना अने सेवा छे। अभी क्या समझाया, पहले तो समझा रहे के अन्य द्रव्य का भाव इसका अर्थ क्या लिया, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म ने यानी आठ कर्म अने द्रव्य कर्म ना उदियादी नु लक्ष्य छोड़ी, यानी द्रव्य कर्म के तरफ ध्यान देने से भाव कर्म उत्पन्न होता है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर वर्तमान पर्याय जो है जानन देखन जो ज्ञान की पर्याय है एक त्रिकाळी न्यायक भाव नु लक्ष्य करी, यानी उसी के तरफ झुकी झुकती जो है उसी को यहाँ उपासना कहा है, उसी को इसकी त्रिकाली आत्मा की सेवा करना ऐसा कहा है। ए पर्याय मां शुद्ध नो अनुभव थाई छे के वस्तु त्रिकाल शुद्ध छे, यानी ऐसी जो पर्याय जो अन्य के तरफ न झुकते हुए पर पदार्थों के तरफ पर पदार्थों के भावों के तरफ अपने स्व स्वभाव के तरफ झुकती है, तब उसे अनुभव में आता है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ही हूँ, और वह शुद्धता उस पर्याय में प्रकट हो जाती है। एम ने एम शुद्ध छे एवी वात आई नथी, अन्य द्रव्यों ना भावोती भिन्न एम पाठ छे ने, એટલે જ્યારે અન્ય દ્રવ્યોના ભાવોથી લક્ષ્ય છૂટી જાય, ભાવ યાને ઉનકે ગુણ, ત્યારે પોતાનામાં જે વિકારી ભાવ હતા તેનું પણ લક્ષ્ય છૂટી જાય છે. આહા, શું ટીકા છે. સમયસર તો ભૂપ છે, ભૂપ, ભૂપ એટલે રાજા, કિંગ, સર્વ આગમનો સાર ભગવાન આત્મા, એ જ્ઞાયક રૂપ ચૈતન્ય ભાવ છે, એ શુભાશુભ ભાવ અચેતન છે. એ ક્યાંય આત્મા કૈસા હૈ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ હૈ, ઓર બાકી કૈસે હૈ, અચેતન હૈ. કોણ બાકી, શુભ ઓર અશુભ પરિણામ કહાં ઉત્પન્ન હોતે, જીવ મે, ફિર ભી વો અચેતન હૈ, ક્યોંકિ વે ના સ્વયં કો જાનતે હૈ ઓર પર કો જાનતે હૈ, ઇસલિયે ઉનમે ચેતનત્વ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉનકો અચેતન કહા. દયાદાન મહાવ્રતાદી ભાવ અચેતન છે. એ મહાવ્રતાદીના ભાવ એને કલ અમને દેખે છે ને, 28 મૂળગુણ પાલન કરને કે પરિણામ, વે ભી અચેતન હૈ, એમાં ચૈતન્યના તેજનો અંશ નથી. જે જ્ઞાયક ભાવ છે તે શુભાશુભ ભાવોના સ્વભાવે પરિણમતો નથી. યાને જો ત્રિકાલી જ્ઞાયક સ્વભાવ સ્વરૂપ હૈ, વો ક્યાં કહે રે, શુભાશુભ ભાવરૂપ કભી પરિણમતા હી નહીં હૈ, જ્ઞાયક ભાવથી જડ ભાવરૂપ થતો નથી. યાને સ્વયં ચેતન હૈ, વો અચેતન નહીં બનતા હૈ, યાને વો શુભ પરિણામ રૂપ સે નહીં પરિણમતા હૈ. જ્ઞાયક જ્ઞાયક રૂપે જ હંમેશા રહે છે. જ્યારે જ્ઞાયક ભાવ શુભાશુભ ભાવરૂપે કદી થતો જ નથી, તો પછી તે પ્રમત્ત કે અપ્રમત્ત કેવી રીતે થાય, ન જ થાય. તેથી તે પ્રમત્ત પણ નથી અને અપ્રમત્ત પણ નથી. એ અહીં કહ્યું કે ત્રિકાળી એક આત્મા જ સેવા યોગ્ય છે. આ સમ્યક એકાંત છે, એક આત્મા સેવા યોગ્ય છે અને બીજું કાંઈ પર્યાય, એટલે કાંઈ એટલે પર્યાય સેવા યોગ્ય નથી. અને સમ્યક દર્શન કી પર્યાય, સમ્યક જ્ઞાન કી પર્યાય, સમ્યક ચારિત્ર કી પર્યાય, જો પર્યાય હૈ વો સેવા યોગ્ય નથી. એ રીતે અનેકાન છે, તે ભગવાનનો માર્ગ છે. પણ કથનચિત આત્માનું સેવન કરવું અને કથનચિત પર્યાયનું સેવન કરવું એમ કહ્યું નથી. એ અનેકાંત નથી પણ ફૂદડીવાદ છે. જ્ઞાયક ભાવ તો એકરૂપ છે, તે એકનું સેવન કરવાથી પર્યાય ત્રણ થઈ જાય છે, અનેક સ્વભાવરૂપ થઈ જાય છે. દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર ત્રણેયનો ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ છે. દર્શનનો પ્રતીતિ સ્વભાવ, એટલે અભી આપ દેખો ક્યાં સમજા રહે, પહેલે પૂરા પડ લેતા હું. દર્શનનો પ્રતીતિ સ્વભાવ, જ્ઞાનનો જાણવારૂપ સ્વભાવ અને ચારિત્રનો શાંતિ અને વિતરાગતા રૂપ સ્વભાવ છે. અભી ક્યાં કહેતે, દર્શન ગુણ જો હૈ તો વો ઉસકા ક્યા કાર્ય હૈ, તો કહેતે માનના 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 માનના, યે શ્રદ્ધા ગુણ કા કાર્ય. ઓર જ્ઞાન ગુણ કા ક્યા કાર્ય, તો કહેતે જાનના 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 જાનના. ઓર ચારિત્ર ગુણ કા કાર્ય ક્યા હૈ, કે સ્વરૂપ સ્થિર રહેના સ્થિર રહેના સ્થિર રહેના સ્થિર રહેના. અબ ગડબડી ક્યાં હોતી હૈ, કે યહ જો દર્શન જો હૈ ઉસકા જો પ્રતીતિ અને માનના સ્વભાવ હૈ, વહ જબ સ્વ કો મેં એસા હી હું યહી મેં હું, યાને જૈસા ત્રિકાલી સ્વભાવ હૈ યહી મેં હું, એસી પ્રતીતિ હો જાતી હૈ, તો ઉસકા સમ્યક પરિણામ હોતા હૈ. ઓર જો પર પદાર્થો મેં યહ મેં હું એસા જો માનતા હૈ, તો ઉસકા વો મિથ્યા પરિણામ ચાલુ હોતા હૈ. વૈસે હી ચારિત્ર ગુણ, ચારિત્ર ગુણ કા કાર્ય કે સ્થિત હો જાના, સ્થિર હો જાના, કિસી મેં એકાગ્ર હો જાના. તો જબ યે પર્યાય મેં એકાગ્ર હોતા હૈ તો મિથ્યા ચારિત્ર ચાલુ હોતા હૈ, ઓર જબ સ્વ મેં એકાગ્ર હોતા હૈ તો સમ્યક ચારિત્ર હોતા હૈ. અભી યહાં સ્વભાવ કી બાત કર રહે ના, તો યહાં વિભાવ રૂપ કી બાત નહીં કર રહે, તો ક્યાં સમજા રહે, દર્શનનો પ્રતીતિ સ્વભાવ, યાને વો બસ માનના 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 યે ઉસકા સ્વભાવ. અભી કૈસા માનના ઉસકી બાત નહીં બતા રહે હો. ઓર જ્ઞાનનો જાણવા રૂપ સ્વભાવ અને ચારિત્રનો શાંતિ અને વિતરાગતા રૂપ સ્વભાવ છે. આહા હા, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ सम्यक पर्याय की बात ली है। भगवान एक रूप न्यायिक स्वभावी आत्मानी सेवा करवा थी, यानी उसका मनन चिंतन और एकाग्रता करने थे, अनेक रूप स्वभाव पर्याय उत्पन्न थाय छे। आ अनेक रूप स्वभाव पर्याय नी सेवा करवी ए तो व्यवहार थी उपदेश आप्यो छे। अभी अनेक रूप स्वभाव पर्याय यानी क्या के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अनेक पर्याय था। क्या कहते देखो तीसरी लाइन के आहा, भगवान एक रूप न्यायिक स्वभावी आत्मानी सेवा करवाती, यानी उसमें मनन चिंतन और एकाग्र होने के बाद क्या होता है, अनेक रूप स्वभाव पर्याय उत्पन्न थाय छे। आ अनेक रूप स्वभाव पर्याय नी सेवा करवी ए तो व्यवहार थी उपदेश आप्यो, यानी तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना चाहिए, ये कहना वो तो व्यवहार से कहे, तो तुमको क्या करना चाहिए, अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाओ तो ये तीन रूप से पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। तेथी दृष्टि मां सेवा योग्य एक आत्मा ज छे एम सिद्ध थाय छे। आ सोळमी गाथा जाने सोळ वल्लू सोनू, चौदमी गाथा मां सम्यक दर्शन नी प्रधानता थी कथन छे, पंदरमी गाथा मां ज्ञान नी प्रधानता थी कहूं के ज्ञान नी अनुभूति ते आत्मानुभूति ज छे। आई कहे छे के सम्यक दर्शन ए आत्मानु, ज्ञाननी अनुभूति ते आत्मानी, अने एमा स्थिरता करवी ते चारित्र पण आत्मानु, पण ए त्रण पर्याय थई भेद थयो, त्रण प्रकारनो स्वभाव थयो, ज्यारे भगवान आत्मा तो एक रूप न्यायक स्वभावी छे। ये परसों हमने याद किया था, मालूम है आपको, दो लाइन नहीं थी, किसको याद है, अच्छा बोलो, बरोबर, बहुत सरस। या वही बात यहाँ पर आई है, देखो देखो क्या कहते हैं, से ये पैराग्राफ है ना, चौदहवीं गाथा में लिखा है ना, उसमें दूसरे लाइन के ज्ञान नहीं प्रधान थे कुछ ज्ञानी वगैरह वगैरह, आई कहे छे के सम्यक दर्शन ए आत्मानु। अब ये दर्शन भी किसका, मतलब जिसमें श्रद्धा किसकी करनी है तो आत्मा की, और ज्ञान ने अनुभूति ते आत्मा नी छे, अने एमा स्थिरता करवी ए चारित्र पण आत्मानु छे, यानी तीनों बातें आत्मा की ही लगी है, अने ये त्रण पर्याय थई, त्रण प्रकारनो स्वभाव थियो। और बात क्या है, मूल में भगवान आत्मा तो एक रूप ज्ञान स्वभावी है, अभेद अखंड एक रूप, ऐसा जो हमने देखा था ना, तो ये एक रूप यहां से बात आई। प्रश्न, तत्वार सूत्र में एवं आवे छे ने के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग छे, ए निश्चय छे, पन ए पर्याय नो निश्चय छे, ये परमार्थ वचनिका में बात आई है। ए पर्याय नी कथन छे, तेती व्यवहार नहीं नु कथन छे, वस्तु एक रूप न्यायक भाव ते निश्चय छे, बस सम्यक दर्शन छे तो निश्चय पन भेद पाड़ी ने कथन करवू ए व्यवहार छे। ये बात समझ में आई? देखो अभी क्या है कि ये निश्चय में भी व्यवहार निश्चय है, ऐसा बात बता रहे, या तो जैसा आपको कहा कि आप आत्मा का अनुभव करो, हाँ साहब जरूर करेंगे, लेकिन वो आत्मा क्या होता है, आत्मा आत्मा होता है, नहीं नहीं समझे, नहीं क्या नहीं समझे, आत्मा आत्मा होता है, तो ये आत्मा आत्मा ही है कहना निश्चय है, आत्मा का अनुभव हुआ ये कहना निश्चय है, लेकिन ये आत्मा कैसा है तो किस तरह समझाएंगे आप, अरे जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो जो आत्मा का ही हमने भेद करके समझाया, वैसे यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ने आत्मदर्शन व निश्चय सम्यक दर्शन, और ये निश्चय सम्यक दर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन भेद करके कहा ना, तो वो निश्चय का ही भेद करके कथन का, इसलिए वो व्यवहार में चला गया। बात देश फिर से पढ़ते। हाँ 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 हाँ, पर्याय नो निश्चय है ना, पर्याय में भी दो है ना, एक व्यवहार व्यवहार सम्यक दर्शन भी है, उसकी बात नहीं ली है। जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसकी पर्याय में जो बात ली है, क्योंकि वह तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पर्याय आ गई ना।
देखो, पर्याय का निश्चय नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय, श्रद्धा गुण के पर्याय को सम्यक दर्शन कहना, ये निश्चय हुआ। परंतु वहां जो राग है उसको सम्यक दर्शन कहना, ये व्यवहार हुआ। जो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है उसको हम सम्यक दर्शन कह देते हैं, तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। तो ये पर्याय में हमने, यानी सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, तो उसमें हमने निश्चय व्यवहार लगवाया। बराबर, यहाँ तक समझे? यानी निश्चय सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, और व्यवहार सम्यक दर्शन ये उसके साथ होता है, परंतु वो तो राग रूप है। बराबर, यहाँ तक समझे? अब ये जो निश्चय सम्य दर्शन कहो या सम्य ज्ञान कहो या सम्यक चारित्र कहो, ये एक एक गुण के एक एक पर्याय की बात हो रही है, और यहाँ हमको भेद करना ही नहीं है, क्योंकि भेद करना ही अशुद्धता है, भेद करना ही मेचकपना है, भेद करना ही वो अनेकपना है। तो अनेकपने से राग उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ निश्चय में तो अभेद अखंड, ऐसा अभी हमने याद किया था ना, वो अभेद अखंड वाला। तो यहाँ सम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा भी अगर भेद उसमें अगर करते हैं तो वो भी व्यवहार नाम पाएगा। पहले जो हमने निश्चय व्यवहार नाम दिया था, वो किस अपेक्षा, जिस गुण की पर्याय उसी के कहने वो निश्चय, किसी अन्य को उस गुण की पर्याय कह देना ये व्यवहार। वहां राग को हमने सम्यक दर्शन कह दिया था, इसलिए वो व्यवहार कहा था। अब जो निश्चय सम्य दर्शन तो है, परंतु उसके अकेले की अलग बात की, पूरे अखंड आत्मा में उसको नहीं लेते हुए उसके अलग से बात की, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, इन तीन का सेवन करना, तो हमारा लक्ष्य तीन अलग अलग पर गया, तो ये भेद हुआ। जहाँ भेद होता है वहाँ व्यवहार।
देखो, व्यवहार भी दो अपेक्षा से कहा जाएगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ रिलेशन बताना ये व्यवहार नहीं का कथन, और एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करना वो भी व्यवहार नहीं का कथन। तो ये दूसरे नंबर की बात यहाँ चल रही है। अभी वैसे तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही मोक्ष मार्ग है, ये बात सही है, पर वो निश्चय मोक्ष मार्ग कौन सा है एक्चुअली? वैसे देखा जाए तो आत्मा का दर्शन, आत्मा का ही ज्ञान, यानी वो जो आत्मा का अनुभव, ऐसा कहो तो वो तो एक बात हो गई आत्मा। अभी उसके तीन टुकड़े कर दिए, मतलब भेद कर दिए, तो वो व्यवहार में आ गया। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन के तीन भेद कर दिए उन्होंने, निश्चय सम्यक्त्व के। देखो फिर से पढ़ता हूँ, ए निश्चय छे, कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग छे, ऐसा लिखा है। ए निश्चय छे, पन ए पर्याय नो निश्चय छे, यानी पर्याय में वही की वही बराबर है बात, ए पर्याय थी कथन छे, तेथी व्यवहार नहीं नु कथन छे, क्योंकि पर्याय ने ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये पर्याय तो है। वस्तु एक रूप न्यायक भाव ए निश्चय छे, अने एनो अनुभव ते निश्चय डायरेक्ट, सम्यक दर्शन छे तो निश्चय, पन भेद पड़ी ने कथन करूं ते व्यवहार छे। अभी ख्याल में आई बात? प्रतिभा ते आपने पूछा था ना, क्या मिलन भाई ने, अपना क्या नाम है, पिनांग भाई ने पूछा था, मेरे को याद नहीं है, आप समझ लो, नहीं तो आप ऐसा मत कहना, ए मेरे को नियम दिया था छान के पानी पियो, ऐसा मत करना। हाँ, प्रवचन सार गाथा 242 में आवे छे के भेद थी कथन करवू ए व्यवहार छे, अने अभेद थी निश्चय छे, वहां उस अपेक्षा से उन्होंने बात ली है। गाथा 242 नी टीका में बीजो पेरेग्राफ ते, अभी वहां की जो बात है वो यहां समझा रहे। संयत, संयतत्व रूप, संयतत्व रूप अथवा श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग, ये क्या हो गया? संयतत्व यानी क्या है? ये क्या लिखा है तो आपके बड़े नए पुस्तक, संयम तत्व रूप, ये हाँ संयम तत्व रूप होना चाहिए, क्योंकि अथवा लिखा है ना श्रामण्य रूप, यानी जो मुनियों के भेदात्मक हुआ थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग छे एम पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं थू तेनु प्रज्ञापन छे, यानी वहां पर भी जो कोई 242 गाथा में मुनियों की अपेक्षा से जो बात कही गई है वो भेदात्मक होने से वह भी व्यवहार नहीं का कथन है। गाथा 242 पछी ना श्लोक 16 मा आवे छे के ए प्रमाणे प्रतिपादक ना आशय ने वश एक होवा छता पण अनेक थतो होवाथी अर्थात अभेद प्रधान निश्चय नहीं थी एक एकाग्रता रूप होवा छता पण कहनार ना अभिप्राय अनुसार भेद प्रधान व्यवहार नहीं थी अनेकपने दर्शन ज्ञान चारित्रपणे थतो होवाथी एकता ने एटले एक लक्षणपणा ने तेमाज त्रिलक्षणपणा ने पामेलो जे अपवर्ग नो मार्ग जो एक ने पामेलो ए निश्चय छे त्रण रूप पर्याय ने पामेलो ते व्यवहार छे बन्ने ने एक साथे जाणवो ए प्रमाण छे।
ये 242 गाथा में संयतत्व ही लिखा है, संयतत्व यानी संयतपना।
अच्छा संयतत्व, संयतपना,
संयतपना उसी का दूसरा नाम है एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य, उसी को कहते हैं मोक्ष मार्ग।
देखो वहां पर भी यही बात बताई है जो गाथा 242 में कि जो एक है वह तो निश्चय है और उसका भेद करके जो कथन किया है वह व्यवहार है, वहां उन्होंने उसी की पुष्टि करने के लिए बात दी थी। यहाँ पर एक नई बात आई है कि एक ने पामेलो छे ये निश्चय छे अने त्रण रूप पर्याय नो पामेलो तो व्यवहार छे अने बन्ने ने एक साथ जाणवो ते प्रमाण छे, यानी प्रमाण में किसी को मुख्य या किसी को गौण ऐसा करके समझा देनी है, वहां किसी को ना मुख्य और गौण किए बिना सब बातों को बताना यही प्रमाण का विषय है। अहो कुंद कुंदाचार्यना शास्त्रों में तो घनु गूढ़ ने गंभीर सत्य नु कथन आवे छे। श्रीमद राजचंद्र कहे छे के श्वेतांबरनी मोड़ाश ढीलप ने लईने रस ढीलो पड़ी जाय छे, जारे दिगंबरना तीव्र वचनों ने लईने रहस्य समझी शकाय छे। अभी आप तो मेरा आरोप मेरे पे करते हो तो छोड़ देंगे कि नहीं, यहाँ क्या लिखा है देखो देखो। हाँ क्या ये क्या कहते हैं, श्रीमद आचार्य श्रीमद जी कहे छे, मैं नहीं श्रीमद जी कहे छे शू के श्वेतांबरनी मोड़ा ढीलप ने लईने रस ढीलो पड़ी जाए छे, यानी हलवे हलवे बोलवो जरा कोई ने दुखावो नहीं ये काम नहीं पड़े एम के, मैं नहीं हो श्रीमद, और वो भी मैं भी नहीं कह रहा हूँ, वो तो स्वामी जी उनका उदाहरण दे रहे। बेन देखो जारे दिगंबरना तीव्र वचनों ने लईने रहस्य समझी शकाय छे, रहस्य समझी शकाय छे ने मूल वस्तु जो है वो मूल वस्तु का ज्ञान होता है, आ तो श्रीमदे मिठास थी कहूं छे। फिर और भी वो क्या बोलते पंडित श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना पांचवा अधिकार मा साफ साफ खुलासो करियो छे के श्वेतांबर अने स्थानकवासी ए अजैन छे, जैन नथी। ये मूल दिगंबर की बात है, क्योंकि श्री पंडित टोडरमल जी तो मूल दिगंबर थे ना, वो किससे डरते, उन्होंने तो बिल्कुल आप घर में जाके देख लेना पांचवे अधिकार में तो अजैन और अजैन में पहले श्वेतांबर को मत लिया है, यानी अन्यमति न खंडन ऐसा कुछ है, अन्यमति का कुछ खंडन ऐसा
अन्य मतावलंबी कहा था।
अन्यमति जो है उनके खंडन करने के लिए पहला पहला कोई लिया हो ताजा ताजा तो श्वेतांबरों की बात ली है। इधर तो क्लीन दिया है कि ते अजैन छे जैन नथी, बधी शास्त्रों नी साक्षी आई पड़ी छे, यानी वो कहते कि मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र में जो कथन किया है वो मेरे सामने है, आपको चाहे वो शास्त्र खोल के मैं बता सकता हूँ, ऐसा वो कह रहे आई बदी शास्त्रों की साक्षी आई पड़ी छे। आ तो जैन धर्म वीतरागनो मार्ग छे, यानी यहाँ किसी के द्वेष के कारण ऐसा कहा जाता है ऐसा मत समझना, ये बात ही वितरागता की है। सर्वज्ञ वितराग देवे गणधरणे इंद्रोनी वच्चे समोचरण मां जे दिव्य ध्वनि करी हती ते आ छे। हवे भावार्थ मां पंडित जयचंद जी कहे छे के दर्शन ज्ञान चारित्र ए त्रणे आत्मा नीज पर्याय छे, कोई जुदुई वस्तु नथी, तेथी साधु पुरुषोए एक आत्मानुं ज सेवन करवुं ए निश्चय छे, अने व्यवहार थी अन्य ने एज उपदेश आपवो, उपदेश ए व्यवहार विकल्प रूप छे। यानी वो उपदेश में तो ऐसा व्यवहार का ही कथन करेंगे, आत्मा का अनुभव करो ऐसा कहने से लोगों को समझ में नहीं आवे, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट करो ऐसा ही उपदेश देंगे। अब एज अर्थनो कलश रूप श्लोक कहे छे। अरे वाह,
5 नंबर का पृष्ठ पे श्लोक 6
अनुष्टुप
दर्शन ज्ञान चारित्रये त्रित्वात् एकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणता। वो मेचको अमेचको, वो बीच में ऐसा इस टाइप आता है ना, विसर्ग कहते हैं उसको।
अभी देखो यहाँ उसी के नीचे लिखा है, अवेज एज अर्धनो कलश रूप श्लोक कहे छे। क्या लिखते हैं श्लोकार्थ में, प्रमाणता एटले प्रमाण दृष्टि थी जोइए तो आत्मा एटले आ आत्मा समम मेचकह अमेचकह च अपि एकी साथे अनेक अवस्था रूप एटले मेचक पण छे अने एक अवस्था रूप अमेचक पण छे। देखो यहाँ प्रमाण दृष्टि से हम आत्मा को देख रहे हैं, तो प्रमाण दृष्टि यानी तो अभी हमने आपको देखा था कि उसमें किसी को मुख्य न करते हुए यानी किसी विशिष्ट एंगल को न मुख्य करते हुए, यानी यहाँ द्रव्य को न मुख्य किया है न पर्याय को मुख्य किया है, ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जैसा बताया वैसे यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाण दृष्टि से जोइए तो आ आत्मा एक ही साथे अनेक अवस्था रूप मेचक पण छे अने एक अवस्था रूप अमेचक पण छे। दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रित्वात, कारण के एने दर्शन ज्ञान चारित्र थी तो त्रण पणू छे अने पोता थी पोताने एक पणू छे। यानी एक ही आत्मा को हम जुदी जुदी अपेक्षा से देखते हैं, तो पर्याय की अपेक्षा देखें तो उसमें तीन पना हमें दिखाई देता है, दर्शन ज्ञान और चारित्र, और स्वभाव की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो वह जो एक पना है वह पोता थी पोता ने, यानी दूसरे किसी के कारण से नहीं और अपने ही कारण से एक पना है। यह तो प्रमाण दृष्टि हुई, तो भावार्थ में देते हैं, प्रमाण दृष्टि मां त्रिकाल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप जोवामां आवे छे, तेथी आत्मा पण एकी साथे एकानेक स्वरूप देखवो। एकानेक स्वरूप यानी क्या, एक और अनेक, एकानेक क और अ एक साथ आ गया ना। तो यह फिर से दोबारा हम पृष्ठ क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रमाणतः प्रमाण दृष्टि थी जोइए तो आत्मा आ आत्मा समम, समम एटले एक ही साथे, यानी उसमें काल भेद नहीं है, एक ही एट अ टाइम। मेचक, मेचक यानी क्या, अनेक अवस्था रूप एटले पर्यायना भेद रूप मेचक पण छे अने अमेचक भी एक अवस्था रूप अभेद अमेचक पण छे। हवे एनो खुलासो करियो, अभी ये खुलासा हम सोमवार को देखेंगे, ये फिर से ये लेंगे श्लोकार्थ। जावाणी के ज्ञान तई सूझे लो कालो सो वाणी मा सकण मो सदा देत हो।